अष्टपाहुड लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम श्रद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोए सवसाहूनं नमुखारं जिनवरवसहस्वर्धमान
तन्त्रणमग्गं
वोच्छामि
चाहकम्मं
समासेन।
यह कुंदकुंद आचार्य भगवान का जो अष्टपाहुड है, उस अष्टपाहुड पर जो स्वामी जी के प्रवचन हो रहे हैं उसके पृष्ठ क्रमांक 58 पर हम आए हैं। यहाँ बीच का जो पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करते हैं। भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुणों से भरा हुआ है, ऐसा अन्य कौन सा द्रव्य है कि जिसमें अनंत गुण भरे हैं? वीरज भाई, सभी द्रव्यों में अनंत गुण है, उसका अनंत प्रदेशी वो होवे या एक प्रदेशी होवे, सभी में अनंत गुण है। तो कह रहे हैं वर्तमान अवस्था में जो पुण्य पाप के भाव होते हैं वह आत्मा का मूल स्वभाव नहीं वरन विकार है, यानी उल्टा वह विकार है। उस विकार रहित ज्ञान आनंद स्वभाव की निर्विकल्प प्रतीति वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने की योग्यता वाले जीव को सच्चे देवगुरु शास्त्र की यथार्थ पहचान होती है। देखो ये कितनी बार हमें बताते हैं, उनका तो यही समझाना है कि जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको सच्चे देवगुरु शास्त्र की यथार्थ पहचान होनी चाहिए। जब तक यह जीव सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म या शास्त्र किसको कहते हैं, इस बात का उसको निर्णय नहीं है तो वह सम्यक्त्वी नहीं हो सकता। अहो ऐसा मनुष्य अवतार मिला, उसमें बहुत जीवों का बहुत काल तो चला गया, अल्प काल रहा, बहुत उम्र तो व्यतीत हो गई, तथापि अभी भी आत्मा में समझ नहीं आया। अरे सच्चे देवगुरु धर्म की भी यथार्थ पहचान नहीं हुई, उसका तो क्या अवतार। यहाँ अवतार का अर्थ जन्म समझना हो, क्या मनुष्यपने की सफलता। अहो मेरा आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण है, संयोग रहित है, उपाधि से रहित है, ऐसे आत्मा का अंतर में स्वसंवेदन द्वारा ज्ञान द्वारा अनुभव हो और उसके साथ निर्विकल्प प्रतीति हो वह सम्यक दर्शन है। गृहस्थाश्रम में भी वह सम्यक दर्शन होता है। ये एक बात बिल्कुल समझने जैसी है। क्या कहा? गृहस्थाश्रम में भी सम्यक दर्शन होता है, यानी कई भोले जीवों की ऐसी मान्यता है कि मुनि अवस्था में ही सम्यक दर्शन होता है और उसके पहले नहीं होता, इसलिए खास बताया है कि गृहस्थाश्रम में भी सम्यक दर्शन होता है। अरे तीर्यंच गति में भी होता है।
वो तीर्यंच ठीक करना, ये च के आगे ऐसा न नहीं लगता, च छ जन यो वाला यो लगता, या यो तिर्यंच यंग के ऊपर बिंदी लगाओ तो भी चले, ये गलत लिखा है, समझ में नहीं आए।
देखो ऐसा होता है, ऐसा और ये यो को आधा करना और च लगाना, त थ द ध, यानी च च छ ज झ य अभी इतना तो बारह खड़ी आती कि नहीं कच तट पय
वो बाकी भूल जाओ य के ऊपर बिंदी लगाओ और आगे का न निकाल दो
वो सबसे आसान अरे सम्यक दर्शन क्या है और वह क्या अभी उसके पहले रह गया अरे तिरंज गति में भी होता है कौन सम्यक दर्शन ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त जीव उसका चिन्ह क्या है उसका यहाँ वर्णन चल रहा है अरे सम्यक दर्शन क्या है और वह कैसे हो इसकी भी खबर न हो और जिंदगी ऐसे की ऐसी चली जाए तो फिर पशु के अवतार में और मनुष्य के अवतार में भेद ही क्या रहा मात्र देह का ही भेद रहा यानी उसको पशु का देह और इसको मनुष्य का देह सम्यक दर्शन के निमित्त रूप देवगुरु शास्त्र कैसे होते हैं यथार्थ जैन मार्ग कैसा होता है उसकी पहचान के लिए वर्णन चलता है यथार्थ जैन मार्ग की पहचान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और बिना सम्यक दर्शन के कल्याण नहीं होता आत्मा के स्वभाव की प्रतीति न करे और प्रतीति के साधनों में प्रीति भी न करे तो भाई क्या कहा देखो 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 ये आत्मा के स्वभाव की प्रतीति न करे यानी अपने स्वभाव कैसा है क्या है उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं करे और प्रतीति के साधन ये प्रतीति के साधन कौन होंगे प्रेरणा बिना आप समझ गई है शाबाश देव गुरु शास्त्र की बात है कह रहे हैं प्रतीति के साधनों में भी प्रीति न करें तो भाई यानी उनके भी तुम आदर सत्कार नहीं करेंगे तो कहे के तूने मनुष्य होकर नया क्या किया बाहर में पुण्योदय से लक्ष्मी आदि के ठाट मिले या पापोदय से वे टले उसमें आत्मा का कुछ भी हित या अहित नहीं है तथा रुपये पैसे मिले उसमें भी आत्मा का कुछ हित नहीं है और वर्तमान में कुछ दाना दिक का शुभ भाव करे वह भी जीव को शरण नहीं है यानी उससे उसका कुछ भला होने वाला नहीं है क्यों कि जिसके पास बहुत पैसा होगा वो बीमार पड़ता होगा कि नहीं मरता होगा कि नहीं तो 10-50 डॉक्टर को बुलावे ना अरे बहुत पैसा है सुनो सुनो बहुत पैसा है तो हम क्या करते हैं बड़े बड़े कंसल्टेंट को अपने घर में बुलाते हैं या और भी जास्ती पैसा है तो फॉरेन जाके ट्रीटमेंट करते हैं अरे प्रभुपन तेरी जब ही मौत आनी है हमने तो ऐसा स्वयं डॉक्टर है और वो फॉरेन में जाके ट्रीटमेंट लेके आते हैं क्या करें बोले और उसी रोग से मरते हैं ऐसा नहीं कि दूसरे रोग से मर गए हमें तो ये भी मालूम है ना एक ऐसा बहुत बड़ा नामचीन जिसको बोलते हैं यानी फेमस हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर वो हार्ट अटैक से मर गया क्या करे तो यहां तो कह रहे देखो वो जो शुभ भाव करे वह भी जीव को शरण नहीं है आत्मा की शांति उसमें भी नहीं है यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात है वही धर्म का मूल है सम्यक दर्शन होने पर आत्मा को स्वभाव की शरण से अतीन्द्रिय शांति के अंश का वर्तमान में वेदन होता है सम्यक दर्शन के साथ अकषाय शांति का भाव होता है वह प्रशम है यह हम देख रहे थे ना बाह्य अंग जो देख रहे थे वहाँ उसमें प्रशम संवेग आदि की बात देखनी थी तो कह रहे सम्यक दर्शन के साथ अकषाय शांति का भाव होना वह प्रशम है और सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है अर्थात ऐसा प्रशम हो वहाँ सम्यक दर्शन होता है इस प्रकार प्रशम का वर्णन हुआ अब संवेग आदि का वर्णन करते हैं धर्म संवेग की बात धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह वह संवेग है तथा साधर्मियों के प्रति अनुराग व पंच परमेश्वरी के प्रति परम प्रीति वह भी संवेग है, ये व्यवहार से उसका कथन किया है। अहो, 8 वर्ष के बालक अथवा 3 इंच को भी सम्यक दर्शन होने पर ऐसी दशा होती है। ये 3 इंचों को जन्म के बाद कितना टाइम में सम्यक दर्शन हो सकता है मालूम है भाई किसको? हाँ डॉक्टर, हाँ अभी बराबर मालूम है, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी आप जानती हैं? अच्छा आप क्या कहेंगे? प्रेरणा बेन आप क्या बोलती हैं? मालूम मंदा, देखो जो समूर्छन जीव होते हैं ना, हाँ उनको अंतर्मूर्त रखता है और गर्भश गर्भश को, हाँ कोई बात नहीं। पृथक तो मास यानी किसी को 3 से 9 के बीच में कभी भी, अलग अलग प्राणियों का अलग अलग होगा। 2 महीने
बताया में बताया कहीं 2 महीने,
हाँ 2 महीना ऐसा भी
बताया। भूमि में आता है कहाँ?
हाँ जी
भोग भूमि में आता है कहाँ है? भोग भूमि में बताया कहाँ पर बताया? 3 इंच
नहीं नहीं, स्वयंभू रमन समुद्र की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो नक्की है, जो सम्मूर्छन 3 इंच है उसको पैदा होते ही अंतर मुहूर्त में होगा, ये बात नक्की है। अब बाकी जो गर्भज है उसके लिए आपने जो बताया वह मुझे भी याद है, आप जो कह रहे 2 महीने की बात है लेकिन वो निश्चित नहीं कि कहाँ के 3 इंचों की है। हाँ वो भी देखा है पर वो विशिष्ट कहीं जगह की है या सभी को अप्लीकेबल है? पृथक मास ये तो मुझे भी याद है, अभी वो पृथक का अर्थ भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। चलो ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ जो बात बताई ना, 8 वर्ष के बालक अथवा 3 इंच को भी, ये 3 इंचों को 8 वर्ष मत लेना ऐसा मैं कहना चाहता था, सम्यक दर्शन होने पर ऐसी दशा होती है यानी कैसी, धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह आता है और उसको आत्मा के शुद्ध स्वभाव रूप धर्म के प्रति परम उत्साह होता है तथा उस धर्म के फल में धर्म के फल के प्रति भी उत्साह होता है, किंतु उसको पुण्य या पुण्य के फल रूप संयोग के प्रति उत्साह नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। अहो 3 इंच को भी भगवान के समोचरण में दिव्य ध्वनि सुनते हुए अंतर में भान हो जाता है कि अहो अहो यह मेंढक का देह मैं नहीं, मैं तो चिदानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? समोचरण में मेंढक भी जाते हैं और हम नहीं जाते मंदिर में, इस प्रकार वह भी अंतर में स्वभाव की महिमा प्रकट करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसको अपने स्वभाव के प्रति परम उत्साह होता है और केवल ज्ञान के प्रति भी परम उत्साह होता है, संसार के प्रति उत्साह टूटकर आत्मा के धर्म और धर्म के धर्म फल के प्रति, ये धर्म फल एक साथ चाहिए, परम उत्साह प्रकट होता है, इसका नाम संवेग है। ऐसा संवेग समकीति जीव के होता है, जैसे पुत्र के झूले के समीप विशाल सर्प आ गया हो और अन्य उपाय न हो तो पुत्र के प्रेमवश वहाँ सर्प को हाथ में पकड़ लेते हैं, वहाँ यद्यपि सर्प को हाथ में पकड़ तो रखा है किंतु क्या उसको पकड़े रहने का उत्साह है? देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया, देख लेना हो क्या कहा, वहाँ यद्यपि सर्प को हाथ में पकड़ तो रखा है किंतु उसको पकड़ रखने का उत्साह है, पकड़े रहने की बुद्धि है नहीं, वैसे ही समकीति धर्मात्मा को निचली दशा में राग द्वेष तो हो किंतु उसे उनमें उत्साह नहीं है, प्रीति नहीं है। वाह वाह, राग, उस राग को पकड़ने की बुद्धि नहीं है, होश प्रीति और उत्साह तो स्वभाव में ही वर्तता है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव रूप धर्म और उसका फल केवल ज्ञान, उसके प्रति समकीति को परम उत्साह होता है। इसके अतिरिक्त राग का या राग के फल का उत्साह धर्मी के उड़ गया है, उड़ गया होता है। तथा धर्मात्मा को साधर्मी के प्रति भी परम अनुराग होता है। जैसे अपने सम्यक श्रद्धा वाले जीवों को जैसे अपने जैसे सम्यक श्रद्धा वाले जीवों को देखे वहां परम अनुराग आता है कि अहो धन्य है साधर्मी मिले। तथा सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखने वाले साधर्मी के प्रति प्रीति होती है और पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति भी उसको परम प्रीति होती है। अरिहंत भगवान और उनकी प्रतिमा जी, सिद्ध भगवान, वितरागी दिगंबर मुनि आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसे परमेष्ठी भगवंतों के प्रति भक्ति और उत्साह का भाव आता है। समकीति का ऐसा संवेग है। यहाँ धर्म और धर्म के प्रति, धर्म के फल के प्रति समकीति को परम उत्साह होता है ऐसा कहा, किंतु उसको अभिलाषा नहीं कही, क्योंकि उसे तो विषयों की अभिलाषा नहीं होती, विषयों में सुख बुद्धि नहीं है। यहाँ अस्थिरता संबंधी राग के कारण होने वाली अभिलाषा को नहीं गिना है। किंतु मिथ्या दृष्टि के विषयों में सुख बुद्धि के कारण जो इंद्रिय विषयों की चाह है उसे ही अनुराग कहते हैं। देखो अंतर की दृष्टि का भेद पड़ गया है। मिथ्या दृष्टि जीव मिष्ठान त्याग कर सुखी रोटी खाता हो, तथापि मैंने मिष्ठान छोड़ा और सुखी रोटी खाई, ऐसी विपरीत मान्यता का सेवन वह कर रहा है। इस कारण उसको विषयों की ही अभिलाषा है। क्या कहा इन्होंने, देखो ये बात बहुत मार्मिक है। ऐसे महाराष्ट्र में हर जगह देखने में आता है कि मुनिराज रस त्याग करते हैं, वो तो रोज उनको न को होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक संडे या एक कोई दिन है पकड़ो मंडे या कोई भी जो हो, क्या हम उस दिन मिठाई नहीं खाएंगे और फिर आगे इस दिन हम नमक नहीं खाएंगे, उस दिन हम घी का बना हुआ कोई चीज नहीं खाएंगे, ऐसा करते हैं और हमने इसका त्याग किया ऐसा मानकर अपने को धार्मिक मानते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं ऐसा मानना जो है उसके अभी उस रस के प्रति की अभिलाषा छूटी नहीं, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा है ऐसा उसका अभिमान है। देखो देखो फिर से क्या कह रहे हैं, देखो ये ऊपर से पांचवी लाइन में, देखो अंतर की दृष्टि का भेद पड़ गया है। हाँ ये मिल गया सबको, मिथ्या दृष्टि जीव मिष्ठान्न त्याग कर सुखी रोटी खाता हो, तथापि मैंने मिष्ठान्न छोड़ा और सुखी रोटी खाई, ऐसी विपरीत मान्यता का सेवन कर रहा है। ये कहना बात अलग है, ओ लेकिन मानता वो है, उस मान्यता पर यहाँ जोर दिया है। कह रहे हैं इस कारण उसको विषयों की ही अभिलाषा है। और दूसरी तरफ सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चक्रवर्ती हो और ऐसे 32 ग्रास का आहार लेता हो कि 96 करोड़ पैदल जिसका एक ग्रास पचा न सके। ये बात मालूम थी कि नहीं अपने को, क्या कहते हैं उनके 96,000 पैदल होता है और वो उसमें से कोई में भी ये चक्रवर्ती का एक कवल जो होता है ग्रास वो पचा नहीं सके, ऐसा उसका भोजन होता है, ऐसा वर्णन आया है। आपको मालूम होगा शायद, ये तो बताने के लिए अभी लंबी बात नहीं करता हूँ। इन शॉर्ट 10,000 गायों का दूध निकाले, वहां तो 10 लाख से चालू करते हैं अपन, 10,000 से 1,000 गायों को वो दूध पिलावे, गाय हो भैंस हो जो भी हो, आपको भैंस का ले लो, वो हजार भैंसों का या गायों का दूध निकाल कर सौ को पिलावे, वो सौ का दूध निकाल कर दस को पिलावे और दस का दूध निकाल कर वो एक को पिलावे, तो उसका जो दूध होगा वो हजम करने में बहुत कठिन होता है। और ऐसे ऐसे वस्तुओं से उनका मिठाई बने या जो कुछ भोजन बने, तो वो ऐसा कहते 32 बार वो ग्रास खाता है, तो उसमें एक ग्रास भी, यहाँ क्या लिखा देखो, चक्रवर्ती हो, नीचे से चौथी लाइन, ऐसे 32 ग्रास का आहार लेता हो कि 96 करोड़ पैदल, एक दो ने करोड़ जिसका एक ग्रास पचा न सके, तथापि उसको अंदर में चिदानंद स्वभाव की प्रीति के कारण विषयों में से सुख बुद्धि उड़ गई होती है। ये चक्रवर्ती जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं ओरिजिनली, अतः वस्तुतः उसको इंद्रिय विषयों की अभिलाषा नहीं है और जो राग होता है उसकी भी प्रीति नहीं है, क्योंकि निज स्वभाव की प्राप्ति का जो उत्साह है उसे अभिलाषा कहते नहीं। क्या कहा? निज स्वभाव की प्राप्ति का जो उत्साह है उसे अभिलाषा नहीं कहते हैं। देखो समकीति के ऐसा संवेग होता है, समकीति के ऐसा धर्म और उसके फल में उत्साह रूप संवेग होता है, उस संवेग में निर्वेद भी आ जाता है। जिसके स्वभाव तरफ का उत्साह हुआ उसके संसार तरफ का उत्साह छूट गया है, अपने शुद्ध स्वभाव रूप धर्म की प्राप्ति के प्रति अनुराग हुआ, वहाँ अन्य सभी अभिलाषाओं का त्याग हुआ, सर्व पर पदार्थ के प्रति वैराग्य भाव हुआ, यही निर्वेद है। वेदना यानी उसका वेदन करना, निर्वेद यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति सर्व पर पदार्थों के प्रति वैराग्य होना, उसको यहाँ निर्वेद कहा। ऐसे प्रशम संवेग और निर्वेद रूप जो अकषाय भाव है वे सम्यक दर्शन के साथ होते ही है, अतः वे सम्यक दर्शन का लक्षण है, किंतु वे सम्यक दर्शन से भिन्न गुण की पर्याय है, अतः उन्हें सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण कहा। ये मूल बात ध्यान रखना, यहाँ हमेशा क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन से भिन्न गुण की पर्याय है, अतः उन्हें सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण कहा है। ये अनुभूति जो है उसको भी बाह्य लक्षण कहा था ना, ज्ञान के परिणति जो है अनुकंपा, और यहाँ जो अभी संवेग कहो या निर्वेद कहो वो तो चारित्र गुण की पर्याय है। अनुकंपा, समकीति जीव को सभी प्राणियों के प्रति उपकार की बुद्धि तथा मैत्री भाव हो वह अनुकंपा है, और वह माध्यस्थ भाव है। ये माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या है वीरेश भाई? अरे वाह, समता रखते हो तुम, बहुत अच्छा। माध्यस्थ भाव है, दूसरे अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से दुखी है यह देखकर ज्ञानी के उन पर दया आती है। देवों पर भी दया है कि अरे यह जीव भी उसके अज्ञान भाव से दुखी है। धर्मी के इस प्रकार की अनुकंपा युद्ध समय में भी छूटती नहीं है। समकीति को सर्व जीवों के हित की बुद्धि है, इस कारण किसी के प्रति बैर बुद्धि नहीं है, पर इस पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है और न पर का बुरा चाहते हैं। ऐसा माध्यस्थ भाव समकीति को होता है। मिथ्या दृष्टि पर जीव की दया पाले, वहां मैंने इसको बचाया या मुझे इस दया के भाव से लाभ है, ऐसी मिथ्या बुद्धि है। ये बुद्धि का अर्थ क्या लेना मिली भाई? मान्यता, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसी मिथ्या बुद्धि है यानी ऐसी खोटी मान्यता है, अर्थात समकीति के जैसा अनुकंपा का भाव उसके नहीं होता। ज्ञानी ज्ञाता दृष्टापने की बुद्धि पूर्वक कहीं पर का स्वामित्व ही नहीं मानते, किसी का बुरा करने का अभिप्राय ही नहीं है, सर्व जीवों के प्रति हित बुद्धि है, ऐसा माध्यस्थ भाव उनके होता है, उसका नाम यहाँ अनुकंपा है। क्या कहते हैं? माध्यस्थ भाव जो है उसको यहाँ अनुकंपा कहते हैं। समकीति जीव अपने को पर से सुख दुख या जीवन मरण होना नहीं मानते तथा अपने से पर को सुख दुख या जीवन मरण होना नहीं मानते। अरे समकीति के हाथ में हथियार हो तब भी अंदर में ऐसा ही अभिप्राय पड़ा है। अहो अभी तो जीवों को सम्यक दर्शन की सच्ची बात का श्रवण भी दुर्लभ हो गया है, किंतु सम्यक दर्शन के बिना जीव कितनी भी क्रियाएं करे वे सब व्यर्थ है। देखो यह समकीति का अभिप्राय कैसा अभिप्राय, कि मैं किसी भी पर जीव का जीव मरण सुख दुख नहीं कर सकता, वैसे ही पर जीव मुझे जीवन मरण या सुख दुख नहीं कर सकते, ऐसा धर्मी का अभिप्राय है। जैसे लकड़ी के पड़ने से बिल्ली की कमर टूट जाती है और वह अन्यत्र चलने में असमर्थ हो जाती है, वैसे ही सम्यक श्रद्धा द्वारा समस्त विपरीत अभिप्राय टूट गया, वहां संसार की कमर टूट जाती है। क्या कहते हैं समझ में आया? बिल्ली को लकड़ी से जोर से मारने से उसकी कमर टूट जाती है और वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है। वैसे कहते हैं कि जो श्रद्धा सम्यक हो जाए और उसके सारे विपरीत मान्यताएं थी वो हट जाए, तो क्योंकि उसके संसार की कमर टूट गया, अभी उसका संसार जास्ती दिन नहीं रहा। क्या कहते हैं? तत्पश्चात समकीति को जो रागादि होते हैं वे बहुत अल्प है, ऐसी समकीति की दशा है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ऐसे प्रतीत रूप धर्म भी समकीति के साथ ही वर्तता है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी रूप जो सम्यक दर्शन, उसका यह वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन होने पर जीव के कैसे भाव होते हैं यह बात चल रही है। प्रशम संवेग निर्वेद अनुकंपा ये भी सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अंतरंग दशा पूर्वक बाह्य में भी निर्ग्रंथ दशा हुई हो, ऐसी निर्ग्रंथ दशा रूप मुनि दशा वह जैन मार्ग की मुद्रा है, उसे ही जैन दर्शन कहा है। ऐसे जैन दर्शन की प्रतीति पूर्वक जो आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव की प्रतीति हो वह सम्यक दर्शन है, उसका यह वर्णन है। अंतर में निर्ग्रंथ मुनि दशा हो वहां बाह्य में वस्त्र रहित दिगंबर अभी अपरिग्रही दशा ही होती है। अंतर में मुनि दशा हो और बाहर में दिगंबर दशा न हो ऐसा बनता ही नहीं। जिसको बाहर में निमित्त रूप ही वस्त्रादि सहित दशा हो और उसे मुनिपना माने उसकी तो मुद्रा ही खोटी है। जैन मुद्रा कैसे होती है इसकी उसको खबर नहीं है। अंतर में अपरिग्रह दृष्टि और अपरिग्रह वृत्ति हो और बाहर में शरीर की भी दशा अपरिग्रही हो ऐसी जैन धर्म की मुद्रा है। मुद्रा कहो या उसका स्वरूप कहो, यहाँ अभी आजकल की भाषा में उसका ढांचा ऐसा है, ऐसा यानी वो तो उसका स्वरूप ऐसा है,
उसको दर्शन कहते आए ना अभी।
वो कह रहे हैं कि उसको ही यहाँ इस शास्त्र में दर्शन कहा है। जैन अर्थात जीतने वाला, किसको जीतने वाला? द्रव्य गुण त्रिकाल एक रूप है, पर्याय में क्षणिक विकार और मिथ्यात्वादी है, वह अधर्म है, वह अजैनपना है। उसको जो चिदानंद स्वभाव के भान पूर्वक जीते नाश करे वह जीव जैन है। जिसने मिथ्यात्व का नाश किया और तदुपरांत राग द्वेष का भी नाश करके मुनि दशा प्रकट की, ऐसे जो जैन, उनकी बाह्य मुद्रा भी निर्ग्रंथ दिगंबर होती है, इसका नाम जैन दर्शन है। यहाँ मुनियों की अपेक्षा से ही कथन है। और हमने जो देखा था ना, तीन प्रकार के जैन, एक कुलधारी जैन, एक नामधारी जैन और एक भावधारी जैन। तो भावधारी जैन यानी सच्चा जैन किसको कहना? तो जिसने आंशिक कषायों का नाश किया, यानी जिसके अनंतानुबंधी अभी है नहीं, और जिसने मिथ्यात्व का नाश किया है, अभी वहां तो प्रथमानुयोग द्रव्यानुयोग के कारण उसका नाश किया ही कहेंगे, और कर्णानुयोग पढ़ने वाला कहेगा कि उसका अनुदय किया उसने, यानी उपशम किया, क्षयोपशम किया, क्षय किया। यहां तो अभी प्रथम में जो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा उसको तो कहेंगे कि उसने उसका उपशम किया। तो यही बातें देखो, तीसरी नीचे से दूसरी लाइन पेज 62, जिसने मिथ्यात्व का नाश किया लिखा ना, तो मिथ्यात्व का नाश करेंगे तो क्या होगा भाई, मिथ्यात्व का नाश हो जाए तो अच्छा इधर किसी ने बोला बराबर, किसने बोला, बहुत अच्छा, जयाबेन ने बताया कि नाश होगा तो क्षायिक समकीति होगा। अब यहाँ तो भाई देखो, जैसा जैसा अनियोग है ना उसके प्रकार की उसकी भाषा होगी, तुम कर्णानियोग में पढ़ेगा तो कहीं शुद्ध उपयोग की बात ही नहीं होगी, विशुद्ध परिणाम की बात करेंगे। देखो, जिसने मिथ्यात्व का नाश किया और तदुपरांत राग द्वेष का भी नाश करके, अभी ये डायरेक्ट मुनि दशा की बात है ना, तो वहाँ राग द्वेष का जो नाश हुआ है वो तो कौन कौन से राग द्वेष का नाश हुआ है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय और प्रत्याख्यानावरणीय राग द्वेष कहो या क्रोध मन माया लोग कहो, बिल्कुल ये मुनि अवस्था की बात चल रही ना, तो कह रहे हैं उससे मुनि दशा प्रकट होती है, और हमने जो भाव उधारी जैन की बात की वो एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला है, अनंतानुबंध। और यहाँ कह रहे हैं कि उनकी बाह्य मुद्रा भी निर्ग्रंथ दिगंबर होती है, उसका नाम जैन दर्शन है। अब ऐसे जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो धर्म है उसका मूल सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र दशा यानी मुनि दशा नहीं होती, उस सम्यक दर्शन की पहचान के बाह्य चिन्ह क्या है उसकी बात यहाँ चल रही है। सम्यक दर्शन के साथ निज का स्वसंवेदन होता है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के अंश का वेदन होता है, इस चिन्ह द्वारा स्वयं को अपने सम्यक दर्शन का निर्णय हो जाता है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, उसकी पहचान अन्य गुण की पर्याय द्वारा करने को व्यवहार कहा है। देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर सब बातें अपने को खुली करके बताएं, सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है और उसकी पहचान अन्य गुण की पर्याय द्वारा की जाती है, ऐसे करने को व्यवहार कहा है, और उस अन्य गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह कहा। उन बाह्य चिन्हों में यहाँ प्रशमादि का वर्णन चल रहा है, ये प्रशमादि में किसको किसको लेना डॉक्टर, प्रशमादि जिसको बाह्य चिन्ह कहा है, बहुत अच्छा, और आगे का मालूम है इसके बाद का, आस्तिक क्या, बहुत अच्छा, क्योंकि हम जो ये विषय जो ले रहे हैं ना उसको ही भूल जावे तो फिर सब ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है ऐसा मन में आता है, लेकिन यहाँ तो ये बाह्य चिन्हों की बात चल रही है। प्रशम आत्मा की अकषाय शांति है, समकीति के वैसा शांत प्रशम भाव होता है, तदुपरांत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को साधने का तीव्र उत्साह होता है, वह संवेग है, संसार और संसार सन्मुख के भावों के प्रति उसको उदासीनता रूप वैराग्य होता है, वह निर्वेद है। ऐसे देखो एक ही पैराग्राफ में तीनों की परिभाषा दे दी है, ये प्रशम भाव, संवेग और निर्वेद, तो कह रहे ऐसे प्रशम संवेग निर्वेद समकीति के होते हैं और इन चिन्हों से समकीत की पहचान होती है। समकीति के आनंदानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, इस कारण उसको किसी भी प्राणी का अहित करने की बुद्धि नहीं होती, सर्व जीवों के प्रति हित की बुद्धि होती है, ज्ञान स्वभाव की बुद्धि है, अर्थात सर्व जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव है। यह मेरा अहित करने वाला है, ऐसी बैर बुद्धि का शल्य समकीति के नहीं होता है, क्योंकि समकीति के को ज्ञात है कि मैं किसी पर प्राणी को सुख दुख नहीं दे सकता और कोई अन्य प्राणी मुझे सुख दुख नहीं दे सकता। क्या तथा अन्य के प्रति अनुकंपा, वस्तुतः तो अपने प्रति ही अनुकंपा है। किस प्रकार, देखो यहाँ बहुत नई बात बताएंगे अभी, तो क्या कह रहे हैं देखो कि अन्य के प्रति अनुकंपा यानी परजीवों के प्रति, वास्तुतः यानी वास्तविक देखा जाए तो अपने प्रति ही अनुकंपा है। किस प्रकार, पर के प्रति कषाय न हुआ, अर्थात कषाय द्वारा स्वयं का अहित होता है, उससे अपने को बचाया। समकीति के अभिप्राय में पर का अहित करने का भाव होता ही नहीं, अर्थात उसके अनंतानुबंधी कषाय तो होती ही नहीं। पर की हिंसा दी का कषाय भाव होने पर अपना अहित होता है, किंतु समकीति के वैसा कषाय भाव नहीं होता, अतः अपना अहित भी नहीं होता, यही स्वयं की अनुकंपा है। ये हम कहते हैं ना जीव दया, तो जीव दया तो कहते कि स्व जीव दया कर रही है, ये स्व की अनुकंपा चल रही है। इसलिए जो ऊपर बताया ना अन्य के प्रति अनुकंपा, वस्तुतः तो अपने प्रति ही अनुकंपा है, ये वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए कि जो स्व की अनुकंपा करता है वह पर की ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये ऐसा क्यों लिखा मुझे अभी नहीं समझा। अन्य के प्रति अनुकंपा, वस्तुतः तो अपने प्रति अनुकंपा है, ये चालू विषय में खटकता है मुझे। आपको समझ में आएगा? देखो नीचे से या तो ऊपर से, एक दो तीन चार पांच छठी लाइन में लिखा है कोई मुझे सुख दुख नहीं दे सकता, उसके आगे
अन्य के प्रति अनुकंपा वस्तुता तो अपने प्रति अनुकंपा है, यानी उसने सही मान लिया ना, तभी तो उसकी अनुकंपा हुई।
पर उसका शुभ भाव तो आते
हैं, हम उल्टा लेते हैं ना, अपने अपने में जो स्थिति है उसके पर के प्रति अनुकंपा हो ही जाती है।
हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, तो उन्होंने इस तरह बताया।
या ऐसे भी है ना, सभी जीवों के प्रति हित की बुद्धि है तो वो अपने लिए भी यानी उतना कषाय से रहित पना है ना उसका, यानी अनुकंपा ने प्रीति भाव में नहीं लेना उसको, माध्यस्थ भाव के रूप में ही लेना उसको।
हाँ तो ये फिट बैठेगा। अब आगे अगले पेज पर 64। इस प्रकार समकीति के सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह रूप प्रशम संवेग निर्वेद और अनुकंपा का वर्णन हुआ। अब आस्तिक्य भाव की बात करते हैं। जीवादि पदार्थों संबंधी आस्तिक्य भाव, यह आस्तिक्य है। आस्तिक्य यानी क्या, कि वो है उसको एक्सेप्टेंस। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि देखो कई लोग तो ऐसा कहते ना, क्या है वो बोलते भाई मिली भाई, ब्रह्म सत परम मिथ्या या अहम सत परम मिथ्या, ऐसा कुछ है ना, यानी मैं हूँ सो हूँ बस, बाकी दुनिया में अन्य कुछ नहीं है। ब्रह्म सत परम मिथ्या,
जगत मिथ्या,
जगत मिथ्या, वही एक ही है। तो यहाँ तो क्या कहते हैं, जीवादि पदार्थों संबंधी, तो जीवादि पदार्थ यानी क्या, जीव है या जीव है सब, वो पदार्थ कहो या छेद द्रव्य कहो, वे हैं। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा कहा तदनुसार सर्वज्ञ के आगम से पदार्थों का यानी द्रव्यों का स्वरूप जानना, और जैसा सर्वज्ञ ने कहा वैसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव होना। क्या कहा, वो मुख्य है कि जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव होना, वह आस्तिक्य भाव है। और वह भी सम्यक दर्शन के साथ होता है। देखो देखो, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था, वहां चौथे अधिकार में बात आई थी, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है उसको अन्यथा मानना, मतलब जैसा नहीं है लेकिन वो है ऐसा मानना। तो वहां क्या बात, यहाँ क्या बात बता रहे हैं? सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसा ही है, ऐसा प्रतीति रूप भाव उसको आस्तिक के भाव का, और वहां जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, वो तो उल्टा हो गया, विपरीत। तो ये मान्यता का दोष है, तो उसको आस्तिक के भाव ही नहीं है। यह भी सम्यक दर्शन देखो देखो, हाँ आपका पूछना है श्रद्धा, लेकिन किस बात में कि ये जो वस्तु स्वरूप जो बताया है किसने, सर्वज्ञ देव ने जो बात बताई है वो वैसी ही है ऐसा मानना। हाँ साहब, हाँ एक ही है।
जैसे कोई कहते हैं ना ये स्वर्ग नरक कुछ होते ही नहीं है, बस लोगों को समझाने के लिए वो पाप से हटाने के लिए कहते हैं, तो उनका अस्तित्व भाव नहीं है क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं है ये सर्वज्ञ तो कोई होता ही नहीं है, ऐसा कहना ये क्या है? छह द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्य कोई होता ही नहीं है ऐसा कहना ये।
अरे, और लंबा क्यों जाते हो, काल द्रव्य है नहीं ऐसा बोलने वाले भी है ना, क्या नहीं है आपको मालूम नहीं? आपने क्या बताया कि स्वर्ग नरक आदि नहीं है ऐसा कहने वाले भी लोग हैं, उसके आगे जाके सर्वज्ञ है नहीं ऐसा भी बोलने वाले हैं। तो यहाँ तो आप बता रहे कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी नहीं है ऐसा लोग कहने वाले भी हैं। मैं तो कहता हूँ वो तो ठीक, पर काल द्रव्य ही नहीं है ऐसा मानने वाले भी तो कहते हैं कि सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है वो वैसा ही है ऐसा प्रतीति भाव होना, उसको यह आस्तिक्य भाव कहा। और वह क्या कह रहे, वह भी सम्यक दर्शन के साथ होता है, अतः वह सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान की ऐसी पर्याय होती है, वह पर्याय सम्यक दर्शन से भिन्न गुण की पर्याय होने के कारण उसको सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह कहा है। यहाँ ज्ञान भी हो रहा है ना, तो उसको भी सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह बताया। अभी देखो, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की निर्विकल्प प्रतीति सुसम्यक दर्शन का सीधा अंतरंग लक्षण है। क्या बताया, ये शुद्ध स्वभाव कैसा है उसकी निर्विकल्प यानी अभेद प्रतीति तो सम्यक दर्शन का सीधा अंतरंग लक्षण है। उसके साथ स्वसंवेदन रूप ज्ञान की अनुभूति होती है, वो भी साथ में चालू होगी ना, ज्ञान की अनुभूति है। कैसे, स्वसंवेदन रूप, वह सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण है। अब दूसरी बात, सम्यक दर्शन हो यानी कैसे, अपने शुद्ध स्वभाव की निर्विकल्प प्रतीति हो, वहां नव तत्वों की देवगुरु धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि आचरण होता है। यानी वो उसके साथ साथ, हमने चार बातें देखी थी याद है ना, एक साथ होती है। लक्ष्मी आपको याद है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, सात तत्वों का यथार्थ प्रतीति कहो, श्रद्धान कहो, स्वपर का भेद और आत्मानुभूति, ये चारों ही चीजें। वही बात यहाँ पर अलग अपेक्षा मतलब अलग तरीके से समझा रहे हैं। सम्यक दर्शन के साथ प्रशम संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्तिक के होते हैं वे भी। यहाँ आचरण वगैरह उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षण है कौन, प्रशम संवेग निर्वेद अनुकंप और आस्तिक्य। बाह्य लक्षण कहने से शरीर आदि की बात नहीं, किंतु आत्मा के सम्यक दर्शन के अलावा अन्य भाव की जो सम्यक दर्शन के होने पर होते हैं उनके द्वारा सम्यक दर्शन पहचाना जाता है, उन्हें यहाँ बाह्य चिन्ह कहा है। श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन के अलावा अन्य भाव ऐसा समझना। इस प्रकार सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्हों का वर्णन किया तथा सम्यक दर्शन के 8 गुण है वे इस प्रकार है। ये जो अभी हमने 4 देखे ना, उसी के अंदर ये गर्भित है। निर्वेग और निर्वेद और संवेग एक साथ रखते हैं। देखो, संवेग निर्वेद निंदा गर्रा उपशम भक्ति वात्सल्य और अनुकंपा, इन 8 गुणों का समावेश प्रशम आदि 4 में ही हो जाता है। अभी ये 4 बताए ना पहले हमने, संवेग, अभी निर्वेद को हटा दो। हाँ जी बोलो, उसके पहले कुछ रह गया? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इनमें ये बाकी के 4 गर्भित है। यहाँ जो 8 बताए ना उसमें से, उसमें दोनों की अपेक्षा कह सकते हैं आप। ये है ऐसा ज्ञान होना और वो है ऐसी श्रद्धा होना, ख्याल में है? देखो, ज्ञान जानेगा तो ही श्रद्धान करेगा कि नहीं, इस अपेक्षा से लेना। यानी वो ज्ञान गुण की अपेक्षा से देखो तो वह भी ज्ञान में आया, आस्तिक के भाव है और वो ऐसा है ही, ये श्रद्धान किया तो श्रद्धा गुण की। देखो, प्रशम में निंदा गर्रा और उपशम आ जाते हैं। चलो, ये तीनों को एक साथ होता है। निर्वेद में वात्सल्य और भक्ति आ जाती है, संवेग और अनुकंपा तो भिन्न कहे ही है। इस प्रकार 8 गुण समझ लेना चाहिए। निशंकता, निकांक्षपना, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, ये गुहन का गु दीर्घ चाहिए, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इस प्रकार ये सम्यक्त्व के 8 अंग हैं। अब इनका वर्णन करते हैं। ये बाह्य चिन्ह की बात की, अभी कहते हैं ये सम्यक्त्व के 8 अंग है, यानी जिसके सम्यक्त्व होता है उसको इस प्रकार के 8 अंग होते ही है। तो कह रहे पहला कौन सा है? निशंकित अंग। अभी तो आज नलिन भाई नहीं आए हैं, उनको तो ये 8 अंग तो याद है बिल्कुल। अभी और कोई है कि जिनको 8 अंग याद है? अच्छा, आपको है, बोलो बोलो बोलो। एक आगे पीछे हुआ, कोई बात नहीं। हाँ, आपने पहले उपगुहन कहा, बाद में अमूढ़ दृष्टि कहा, कोई बात नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। 8 को 8 तो याद किया आपने। ये क्यों हमें देखना है कि इस पर से वो जीव सम्यक भी है, इस बात का भी पता लगता है उसको स्वयं को, अन्य को भी। शंका का नाम तो संशय का है और भय का भी है। देखो, शंका में 2 बातें, एक संशय भी है और एक भय भी है। सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालानुद्रव्य, परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ प्रतिपादित किए गए हैं। असंख्य द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ कहे गए हैं तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पूर्व में हो गए और अभी भी दूर महाविदेह क्षेत्रादि में विराजते हैं। उनमें जो शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। यानी ये शंका करना यानी क्या है? संशय रखना। तीर्थंकर कहाँ होंगे, चक्रवर्ती कहाँ होंगे, शास्त्रों में कहा है, वह सत्य है या नहीं, ऐसी जिसको शंका है वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। समकीति को ऐसी शंका नहीं होती। सर्वज्ञ के शास्त्रों में कहे गए असंख्या द्वीपों समुद्रों की जिसके श्रद्धा नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है अर्थात उसमें शंका है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। यानी इतने असंख्यात द्वीप समुद्र हो सकते हैं क्या वगैरह वगैरह। सर्वज्ञ के आगम में द्वीप समुद्रादि जैसे कहे वैसे ही है या अन्य प्रकार, ऐसी शंका समकीति को नहीं रहती। देखो देखो अभी लोगों की भी ऐसी मान्यता है, सुनना हो कि वो चंद्र होता है उसकी कला के अनुसार समुद्र में भरती और ओहोटी क्या बोलते हैं ज्वार भाटा होता है, लेकिन वह तो निमित्त है उसके कारण होता है ये नहीं है। तो जो हमने देखा था ना कि लवण समुद्र के नीचे पाताल है, पाताल कुंड, और उसमें हवा है, ये है वो है, उसके कारण जो कुछ हो रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो लगता है वो क्या होगा, उसकी एक एक दीवारें कितने कितने योजनों की है। तो लोगों को पहले पहले तो इसका विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि ये बात अमेरिका में भी चलाई थी तो पहले पहले तो अरे ऐसा कभी होता है क्या ऐसा, लेकिन जब जब एक एक रीजनिंग आई उनके ज्ञान में, बातें सब ऐसे, तो ये तो आज तक हमें पता ही नहीं था। अरे हमको भी किधर पता था, पहला पढ़ा तो भी उसके पहले कहाँ पता था। यानी यहाँ तो कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो बातें बताई हैं वो है, ऐसा कभी होता है क्या, वो अपने लेवल से सब सोचता है। कौन सी लेवल, अपने इमेजिनेशन कहो बुद्धि कहो, लेकिन जो है वो ऐसा ही है। देखो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जो प्रयोजनभूत बातें हैं उनके बारे में जो यथार्थ वर्णन करें, यथार्थ कथन करें, वो अप्रयोजनभूत बातों में काहे को अप्रयोजनभूत बात करेंगे। यानी इस जीव को अपने स्वरूप में एकाग्र होने से अपना कल्याण होगा, ये बात जो है वो तो यथार्थता कही उन्होंने। हाँ? अब बाकी इतने क्या बोलते हैं, समुद्र है, इतने द्वीप है, इतने चंद्र है, इतने सूरज है, ऐसे ऐसे ये क्या बोलते हैं पाताल है, ऐसी ऐसी वो अंतर क्या होते हैं वो कुबो भूमि, अंतर द्वीप ना, अंतर द्वीप, हाँ अंतर द्वीप वो जो होते हैं कुमनुष्य, वो लोगों को देखो अभी भी आपने शायद कभी टीवी पर वो देखा होगा क्या, ग्रीन कलर का वो आदमी ओनिडा का ऐसा कोई दिखाता है ना। तो आपने यहाँ जो बताया है कि जगन्य भूमि के जीवों का रंग ही हारा होता है, यानी सब मरमेड ये आदि जो है ना वैसे सारे है ये सब। अब उन्होंने किसी में लाया और जैन दर्शन में ये सब बातें हैं। अब आगे सर्वज्ञ भगवान ने पदार्थों को नित्य अनित्य रूप अनेकान स्वरूप कहा है, वह सत्य होगा या असत्य, एक ही पदार्थ में अस्ति और नास्ति ऐसे दो विरुद्ध धर्म कैसे हो सकते हैं, ऐसा संदेह समकीति को नहीं होता। यानी जिसके होता है वो कौन होगा, इस प्रकार शंका का अभाव होना वह निशंकित अंग है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से, अर्थात जब जीव स्वयं विपरीत श्रद्धा करके मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़ता है, तब उसको सर्वज्ञ कथित तत्वों में शंका होती है और विपरीत दृष्टि के कारण पर पदार्थों में आत्मबुद्धि होती है। विपरीत दृष्टि यानी विपरीत श्रद्धान कहो ज्ञान कहो सब, पर में आत्मबुद्धि मिथ्यात्व का कार्य है। शरीर आदि परद्रव्यों में तथा रागादि परभावों में आत्मबुद्धि होना भय उत्पादक है। जिसने शरीर को निज माना उसको ही शरीर के नाश का भय होता है। ये भय उत्पादक क्यों कहा, कि जरा कुछ बीमारी हो जावे तो हर अभी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, निरंतर चलता है ना, तो कहते वो भय उत्पादक है। क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ, तो शरीर को निज माना, जैसा सर्वज्ञ ने कहा है उससे विपरीत मानना, ये पहले बताया था। ये संशय जो है, शंका है, वो संशय है और भय का कारण है। जिसने शरीर को निज माना उसको ही शरीर के नाश का भय होता है। धर्मी तो अपने को देह से भिन्न चैतन्य स्वरूपी अविनाशी जानता है, इस कारण उसको वस्तुतः सात प्रकार का भय नहीं होता। देखो, हम रोज घूमने जाते हैं तो वहाँ एक हमें बाई मिलती है, तो बीच में हम देवलाली गए थे ना, तो उस समय हम 8 दिन तो यहाँ घूमने नहीं आए थे, तो उसके बाद 2-4 दिन से वो मिली। हे आश, मड़ा बहु सारू थियो, केम शू थियो? अरे एवं छे ने, मने लाग्यू शू थयू हशे, केम के हवे आपणे तो उमर लायक थई गया ने, क्यारे शू थवाय। बोला के नहीं? हाँ, कौन देगा रे? पर मैं ये कहता हूँ, ये अपने को शरीर रूप माना ना उसने, तो अरे यहाँ जो शास्त्र में बात आती है ना, रोज मेरे जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका उदाहरण मिल ही जाता है। अभी कहते, देखो, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, रक्षा का भय, अगुप्ति का भय, वेदना का भय और अकस्मात का भय, ऐसे 7 प्रकार के भय हैं। ये सभी भय सम्यक दृष्टि के नहीं होते, मिथ्या दृष्टि को ही इस प्रकार के भय होते हैं। आशंका, भय प्रकृति का उदय तो 8वें गुण स्थान तक है और उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भी भय भी होता है। वह भी सर्पादि को देखकर भय से भागता है। ये भागता है कैसा किया? भागता है चाहिए। फिर भी उसके भय का अभाव किस प्रकार है? ये आशंका का अर्थ यह प्रश्न है, उसका समाधान। समकीति, देखो, ये शंका पूछने वाला भी शास्त्र का अभ्यास करने वालों में से है। क्या कह रहे हैं उन्होंने? क्या कहा कि आप तो कहते हैं उसको सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, लेकिन हमने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि तो होगा, क्यों? वो तो 8वें गुण स्थान में गया है, तो 8वें गुण स्थान में जाने वाला तो निश्चित रूप से सम्यक भी होगा ही होगा। 3 कषाय के चौकड़ी का अभाव भी उसको है ही है। फिर भी कहते हैं कि उसमें 8वें गुण स्थान तक भय का उदय देखने में आता है, और आप तो कहते हैं सम्यक दृष्टि के 7 प्रकार के भय नष्ट हो गए। अरे सांप क्या, चूहा भी देखेगा तो भय से भागता है, बोलते। तो फिर आपने जो कहा कि उसके भय का अभाव है, वो कैसा है? प्रश्नकार का प्रश्न समझ में आया ना? समकीति के अस्थिरता के कारण सहज भय होता है। क्या कहा? ये अस्थिरता यानी स्वरूप में लीनता नहीं है, इससे सहज भय होता है। तथापि स्वरूप में संदेह नहीं पड़ता, अतः दृष्टि अपेक्षा से उसको भी निर्भय ही कहा है। क्या? हाँ, तथापि स्वरूप में संदेह नहीं पड़ता, अतः दृष्टि की अपेक्षा से उसको निर्भय ही कहा जाता है। आपने ऐसा बताया कि जो भय है वो कौन से गुण की पर्याय है? हाँ भाई, चारित्र गुण, स्वभाव पर्याय का विभाव पर्याय, तो विभाव पर्याय का वह करता होगा क्या, वह तो जानता है कि भाई ये भय आया, और मिथ्या दृष्टि तो उसका करता ही बना रहता है, इसलिए कहते हैं क्या वह अपना स्वरूप नहीं है, इसका उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे, वह पर के कारण भय नहीं मानता और उसको स्वभाव में संदेह नहीं पड़ता, अल्प भय अस्थिरता जन्य है, उसका भी स्वामीपना नहीं है, अतः वास्तव में समकीति निर्भय ही है, अस्थिरता जन्य भय को यहाँ गौण किया है। समकीति के स्वभाव की दृष्टि में संदेह नहीं है, ज्ञानानंद स्वभाव में ही उसको स्वामीपना वर्तता है, वह परद्रव्य से अपने स्वभाव का नाश नहीं मानता, वह वस्तुतः उसको भय नहीं होता। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य मूर्ति हूँ, शरीर का स्वभाव विनाशिक है, वह शरीर में नहीं हूँ, अतः मेरा मरण नहीं है। इस प्रकार समकीति के निर्भयता है, सर्पादिक के भय से भयवान दिखने पर वहाँ भी स्वरूप में संदेह उत्पन्न होकर भय उत्पन्न नहीं होता, मात्र अस्थिरता जन्य अल्प भय है। तात्पर्य यह है कि वह कमजोरी का दोष है, किंतु समकीति स्वभाव में तो निस्संदेह निर्भय ही है, ऐसा समकीति का निश्चंकित अंग है। इस प्रकार निश्चंकित अंग का वर्णन हुआ। अभी ये निकांक्षित मंडेको जावानी के ज्ञान कै तुझे